شكرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ہماری اس کلاس کے اندر سورہ مریم کی تفسیر کے تحت ہم ذرا جیسے ہماری عادت ہے یا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ٹینجنٹ میں جا کر کے پھر کچھ اہم مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جن کا ہماری ذاتی زندگیوں کے ساتھ پریکٹیکلی تعلق ہوتا ہے. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ قرآن سے جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں ہدایات حاصل کریں. صرف جو ہے وہ اپنے بس فیکٹس اینڈ فگرز یا معلومات کے اندر اضافہ کرنا جو ہے وہ فقط ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم, یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور اس سارے کے سارے حاصل کرنے والے کیے ہوئے علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے, یعنی اس کے اوپر خیر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. تو جو پچھلی دو کلاسز سے ایک ڈسکشن چل رہی ہے وہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ راغبن اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی طرف کرتے ہوئے کہ اس نے ایسے کہا کہ کیا تم مجھے میرے خداؤں سے ہٹانا چاہتے ہو, یعنی میری رغبت کو ختم کرنا چاہتے ہو, یا یہ تم اٹیمپٹ کر رہے ہو, کوشش کر رہے ہو. اے ابراہیم, اگر تم نہیں رکے اس کام کرنے سے تو میں تمہیں رجم کروں گا, واہجرنی ملیا, اور تم اس سے نا لمبے عرصے کے لیے دور ہو جاؤ. یہ اس ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو جواب دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو ہے وہ یعنی اتنا کچھ ہے اس کے اندر, اتنا کچھ ہے کہ کیا بتائیں, اور جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے حالات کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے. اب کہاں سے شروع کریں, پیچھے سے جو چل رہے تھے وہیں سے شروع کریں یا کوئی اور چیز؟ بہرحال تو پیچھے جو چل رہے تھے اس کو ریکیپ بھی کرنا چاہیے تاکہ ریمائنڈرز جو ہے نا اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول بتا بھی دیا ہے کہ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, تو جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے آپ ذکر کرتے رہیے, ریمائنڈ کرواتے رہیے, کیونکہ ریمائنڈ کروانا جو ہے وہ ماننے والوں کو فائدہ ہی دیتا ہے. جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں تو ان کو تو فائدہ نہیں دیتا, لیکن ماننے والوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ ماننے والے ہیں, بات سمجھ جائیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھیں. ٹھیک ہے نا, تو نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھیں, کوئی اعتراض ہے تو پوچھیں, اور اسی کلاس کے اندر پوچھیں بھائی اور کون سی کلاس لے کر کے ہیں آپ کے لیے, ہے نا. وہ والی کلاس تو ہر کوئی تو نہیں اٹینڈ کرتا ہو, ویسے بھی ہفتے میں ایک ہوتی ہے وہ, تو بھائی جس کلاس میں ہیں اسی کلاس میں پوچھیں جو سوال ہیں ذہن کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو بات پوچھیں, اور اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو مان لیں. ٹھیک ہے نا, ماننے والوں میں سے ہو جائیں, ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے تو وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں بنایا ہے تو اسی نے یہ فرمایا کہ ماننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے یاد دہانی کرانے سے. بہرحال یاد دہانی کرانے کی نیت سے پھر وہی بات کہ رغبت سب سے پہلے شروع ہوتی ہے, سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے, اور رغبت کو اگر آپ وہاں پر ایڈریس کر لیں, کاؤنٹر کر لیں اگر, تو رغبت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. रغبت जो है वो आपके हाथ में होती है कि आप उसको पैदा भी कर सकते हैं किसी चीज के मामले में और आप उसको खत्म भी कर सकते हैं, यानी आप एक अच्छी खासी कोशिश कर सकते हैं रغبت के लेवल के ऊपर। लेकिन जब रغبت के लेवल पे आपने कोशिश ना करी बल्कि वो तलब में कन्वर्ट हो गई, आगे बढ़ गई, तलब बन गई, तो अब जो है ना फिर मामला किसके हाथ में चला जाता है जी? जी अब रिमाइंडर्स में फिर आपसे भी तो कुछ क्विज करना चाहिए ना। पीछे क्या समझा है कि जब रغبت से बढ़कर के बाद तलब में चली जाती है तो अब मामला कहाँ चला जाता है, किसके हाथ में चला जाता है? रغبت से तलब बनना बन जाने के बाद किसके हाथ में जाता है भाई? ऐसा जवाब दें जो कि हर कंडीशन पे पूरा उतरता हो। कुछ याद है पिछली क्लासों में क्या बातें हुई थी? फिर जुमे के बयान में भी इसके ऊपर जल्दी से जरा बात कर दी थी। तो रغبت से बात जब आगे बढ़ती है तलब के दर्जे में पहुंच जाती है तो अब मामला आपके हाथ से निकल जाता है, अब वो किसके हाथ में चला जाता है? जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपके जवाब को देख करके। पहला वाला जवाब सही था, दूसरे तीसरे जवाब जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना? दूसरे और तीसरे जवाब जो है ना वो है शैतान, और तीसरे जवाब में लिखा हुआ है शैतान और नफ्स। नहीं भाई, अगर नेकी की रगबत है, नेकी की रगबत है, वो आगे बढ़ गई, तलब में तब्दील हो गई, तो भी क्या शैतान के हाथ में चला जाएगा मामला? तब तो शैतान के हाथ में मामला नहीं गया ना, ठीक है? नेकी की रगबत बढ़ के नेकी के तलब में तब्दील हो गई तो अब शैतान के हाथ में मामला चला गया? नहीं, ठीक है ना? तो फिर जो सही जवाब है वो पहला जवाब है कि सेलर के हाथ में चला गया, दुकानदार के हाथ में चला गया, सेल्स पर्सन के हाथ में चला गया, ठीक है ना? वो जिस प्रोडक्ट की रगबत आपके दिल में पैदा हुई है, जब वो रगबत तलब में तब्दील हो गई, अब मामला जो है वो उस प्रोडक्ट के सेल्स पर्सन के हाथ में चला गया है। अगर वो प्रोडक्ट शर वाली प्रोडक्ट है, गुनाह वाली प्रोडक्ट है, तब वो सेल्स पर्सन जो है नफ्स और शैतान कहलाएंगे, राइट? शैतान कहलाएंगे, नफ्स कहलाए, नफ्स कहलाएगा इंसान का, ठीक है? लेकिन अगर वो नेकी वाली प्रोडक्ट है तो फिर तो शैतान नहीं है ना उसका उसका दुकानदार, नेकी का दुकानदार शैतान तो नहीं है ना नेकी का सेल्स पर्सन। तो नेकी का जो सेल्स पर्सन होता है वो कौन होता है? जो अल्लाह के वली होते हैं, उलमाए कराम, मशाइख उजाम, सालेहीन, राइट? ये होते हैं नेकी के सेल्स पर्सन। तो सही जवाब क्या था? सेल्स पर्सन के हाथ में चला जाता है, यानी आपके हाथ से निकल जाता है। और इसके ऊपर आपको मिसाल भी दी थी कि सेल्स पर्सन के हाथ में जाने के लिए कौन सी वाली मिसाल दी थी, कोई बता सकता है? कपड़े के थान वाली मिसाल नहीं, बल्कि दूसरी एक मिसाल दी थी कि जब आप सेल्स पर्सन के हाथ में चला गया, आप जब दुकान में दाखिल हो गए ना, तो अब मामला जो है वो आपके हाथ से निकल गया, यानी शौहर साहब अगर बेगम साहब को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल में जा रहे हैं, तो अब शौहर साहब को जो है ना ये बात का पहले ख्याल करना होता है कि महंगी दुकान में ना जाए, महंगी दुकान में ना जाए, राइट? जब महंगी दुकान में, यानी महंगी दुकान में ना जाए, भाई कपड़ा खरीदना है ना, सस्ती दुकान से खरीद लेते हैं, तो शौहर के ये दुकान में दाखिल होने से पहले कोशिश ये होती है कि मॉल की सस्ती कपड़े वाली दुकान के अंदर जाओ ताकि बेगम साहिबा का एक्सपोजर, बेगम साहिबा का जो जो वो जो आशनाई हो, जो एक्सपोजर हो, वो सस्ते कपड़ों से हो। अब सस्ते कपड़ों में से कोई कपड़ा उनको पसंद आ जाएगा तो दुकानदार जो है वो बेच देगा बेगम साहिबा को, दुकानदार साहब जो है वो फिर बेच देंगे, सस्ता कपड़ा बेच देंगे, तो शौहर साहब के पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर बेगम साहिबा जो है वो महंगी दुकान में चली गई, तो अब महंगी दुकान में तो उनको महंगे कपड़ों में से ही कोई कपड़ा पसंद आएगा ना, राइट? तो अब उनको कोई कपड़ा पसंद आ गया, अब क्या होगा? महंगी दुकान का जो दुकानदार है, अब मामला उसके हाथ में, अब वो सेल करेगा उसको, अब वो उसको सेल करेगा, ठीक है ना? और बेगम साहिबा फिर खरीद के ले आएंगी, बिकॉज जो सेल्स पर्सन होता है उसको ट्रिक्स आती हैं सेल करने की, ठीक है ना भाई? तो भाई इसी तरीके से जब हम नेकों की महफिल में जाते हैं, नेकों की सोहबत में जाते हैं तो अब जो नेक लोग होते हैं उनको नेकी सेल करनी आती है, तो फिर वहां पर नेकी खरीद के आ जाते हैं, राइट, नेकी की कोई चीज सीख करके आ जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बुराई के मुकाम पे चले गए, बुराई की सोहबत में चले गए, तो अब वहां पर बुराई के सेल्स पर्सन मौजूद हैं और उनको बुराई बेचना आता है, तो वो बुराई बेच करके आपको घर लौटाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या काम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह के कुरान ने हमें क्या हमारे ऊपर हुक्म लगाया है, क्या हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि तुम कूनू मअस्सादिकीन, कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ। ला तकरबु ज़िना, तुम जहां पर जिना यानी फोहश बातें होती हैं, जहां पर बेहयाई वाली बातें होती हैं, बेपर्दगी वाली बातें होती हैं, और दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की गंद, गलाजत, नफरत, जहां पर ये सब कुछ होता है, तुम उसके करीब भी मत जाओ। ला तकरबू, तुम उसके करीब भी मत जाओ जहां पे दुनिया की मोहब्बत बिकती है। ये जिना जो होता है ना, ये सिर्फ एक फेल को नहीं कहते, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो इंसान की शहवत के साथ होता है ना, जिना का ताल्लुक शहवत के साथ होता है ना। और शहवत जो है वो सिर्फ औरत की शक्ल में नहीं निकलती, बल्कि शहवत जो है वो तो माल पैसा, दुनिया की जो खराफात हैं, शहवत तो हर चीज के लिए होती है। तो आप को अल्लाह ताला बेसिकली ला तकरबु ज़िना के हुक्म के अंदर जो उसकी हकीकत है, वो हकीकत क्या है कि जहां पर भी हराम शहवत का मौका हो, हराम शहवत का मौका जहां पर भी हो, उसके करीब ही भी मत जाओ, उसके करीब ही भी मत जाओ। क्योंकि अगर तुम उसके करीब चले गए, यानी अगर तुम वहां पहुंच गए ना, अब तुम कंट्रोल नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब जो है ना शैतान विल टेक ओवर, तुम्हारा नफ्स जो है ना वो बेकाबू हो जाएगा और फिर तुम उससे नहीं बच सकोगे, है ना। ये जो औरत वाली शहवत होती है, ये तो सिर्फ मर्दों के अंदर होती है, औरतों में इतनी ज्यादा कोई थोड़ी होती है मर्दों वाली शहवत, मर्दों की तरफ जो है वो औरतों में तो नहीं होती। तो भाई औरतों के लिए के अंदर क्या शहवत होती है, औरतों के अंदर शहवत होती है माल की शहवत, दुनिया की लज्जतों की शहवत, और जो है वो जुबान का गलत इस्तेमाल करना, इसकी भी तो एक शहवत होती है ना। जुबान से जो है वो गीबतें कर रही हैं और गॉसिप्स कर रही हैं और तोहमतें लगा रही हैं, और है ना, ये जो चैटिंग होती है ज्यादातर औरतों के अंदर होती है, मर्दों में होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये भी तो शहवती की वजह से होता है ना सब कुछ, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे कंपनी में जाके बैठोगे जहां पर जुबान जो है वो ऐसी लज्जात में इस्तेमाल हो रही है, गीबत और तोहमत और उल्टी सीधी यानी गंदी चीजों के बारे में बातें, तो अब तुम अपने आप को नहीं बचा सकोगी, बिकॉज वहां पर शैतान जो है ना वो तुमको इस गुनाह के अंदर मुलव्विस करके छोड़ेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें सोहबत अच्छी इख्तियार करने का हुक्म दिया और बुरी सोहबत से दूर रहने का हुक्म दिया ना, ठीक है। लेकिन हम जो है वो ना अपने आप को बचा पाते हैं, ना बुरी सोहबत से खुद को बचाते हैं, ना अच्छी सोहबत खुद इख्तियार कर पाते हैं, और ना अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों को बुरी से बुरी तर सोहबत के अंदर पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, बुरी से बुरी सोहबत के अंदर हम अपने बच्चों को पहुंचा देते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम उनसे कहते हैं कि गुनाह ना करना, नहीं नेकी करना, बच के रहना। भाई अब वो कैसे बच के रहेगा, ठीक है ना, अब वो कैसे बच के रहेगी, आपने तो उसको हराम सोबत के अंदर पहुंचा दिया है, ठीक है ना। पहले आपने उसके अंदर रगबत भी पैदा करी, रगबत भी हम खुद ही पैदा करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब वो, अच्छा ये बहुत होता है कि पहले जो है वो बच्ची के अंदर जो है ना वो प्रोफेशनल एजुकेशन और कमाने की रगबत पैदा करते हैं, राइट, कमाओ तुम अच्छे से कमाना, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, और उसके बाद खुद से सारा काम करना है। जब हम उसकी रगबत पैदा कर देते हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद जो है ना वो कहती है मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे तो जो है ना वो पायलट बनना है, मुझे जो है वो एयर होस्टेस बनना है, ठीक है ना। और मुझे जो है वो एस्ट्रोनॉट बनना है, माशाल्लाह है, मैं औरतें एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। या ये कि यहां तक तो बहुत खुश होते हैं ना लोग, हाँ एस्ट्रोनॉट बनेगी, पायलट बनेगी, शी शुड फॉलो हर ड्रीम, क्या कहते हैं, उसको अपने ख्वाब को परस्यू करना चाहिए, ख्वाब के पीछे जाना चाहिए, एंड एवरीवन शुड सपोर्ट हर, ठीक है ना। तो पायलट बनने में बड़े खुश होते हैं आजकल, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भी कहेगी तो हाँ भी, तो बिल्कुल एस्ट्रोनॉट बनना भी बनना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही बच्ची अगर बोले कि आई वॉन्ट टू बी अ गार्बेज लेडी, हमारी बेगम साहिबा ने लड़कियों की क्लास के अंदर जरा ये बात खोली, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू बी अ गार्बेज लेडी, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में जो है वो औरतें घरों के कचरे भी उठाती हैं, स्ट्रीट्स के ऊपर जो आपका कचरा का वो पड़ा होता है ना, बड़ा सा कचरे का ड्रम, तो उसको साफ करने के लिए, उसको उठाने के लिए जो है ना, वो बड़ी बड़ी गार्बेज ट्रक्स आती हैं, या सऊदी अरब में भी आती हैं, अमेरिका में भी आती हैं, यूरोप में भी आती हैं, पाकिस्तान कराची में तो खैर कुछ इंतजाम ही नहीं है इसका, है ना। तो वहां पे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि गार्बेज ट्रक भी कोई चीज होती है, एक जमाने में आया करती थी गार्बेज ट्रक कराची के अंदर। बहरहाल अमेरिका और सऊदी अरब में तो आती है, अमेरिका में तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सुबह जब फजर के लिए निकले थे, और समर के गालबन वो दिन थे, तो सुबह पता नहीं 3:30 बजे फजर के लिए निकल रहा था कि 4 बजे सुबह फजर के लिए निकल रहा था, एक गार्बेज ट्रक आई, उस गार्बेज ट्रक के पीछे जो है ना वो दो बंदे खड़े हुए होते हैं, खड़े रहते हैं, वो अंदर बैठे नहीं होते, खड़े रहते हैं, और जब वो गार्बेज ट्रक आकर के किसी गार्बेज डंप के पास रुकती है ना, फिर वो दोनों बंदे उतरते हैं, वो पीछे से जो है वो उसका खाना खोलते हैं, और फिर इस गार्बेज का जो वो ड्रम होता है, उस ड्रम को उठा, बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, उसको उठा करके जो है वो ट्रक के ऊपर लोड करते हैं, फिर ट्रक की मशीन को चलाते हैं, फिर वो मशीन जो है ना वो उस गार्बेज के जो डंप होता है उसको ट्रक के अंदर सारा का सारा डंप करती है, फिर उसको वापस जो है वो बाहर रख देती है। ये काम जो है वो दो बंदे कर रहे होते हैं। तो सुबह फजर के वक्त जो है, जब मैं फजर के लिए निकल रहा था, अपनी गाड़ी में बैठा था, तो देखा कि एक लड़की उन दो बंदों में से एक जो थी वो लड़की थी, अमेरिकन लड़की, ठीक है ना, और वो ये काम कर रही थी। अब उस गार्बेज ड्रम के अंदर जो है वो खाने पीने की खाली चीजें तो नहीं होती ना, कि लोग खाना एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो गार्बेज ड्रम में फेंक देते हैं, राइट। उसके अंदर तो बाथरूम की नजासत भी होती है ना, उसके अंदर तो सब कुछ होता है ना, जो कुछ आप जो है वो फिल्थ होता है आपके घर का, सब कुछ आप उसके अंदर फेंकते हैं, और वो औरत जो है वो ये काम कर रही है, और वो भी दिन के अंदर नहीं, रात की तारीकी में ये काम कर रही है। वुमेन्स लिबरेशन, औरतों की आजादी, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसी तरीके से किसी की बेटी जो है वो कल को ये बोलेगी कि मॉम मॉम आई वॉन्ट टू बी अ गार्बेज लेडी, ठीक है ना, तो मॉम कहे हाँ यू शुड फॉलो योर ड्रीम, यू शुड फॉलो योर ड्रीम, वाई नॉट गो बी अ गार्बेज लेडी, है ना जी, तो बोलेंगे ना फिर आप लोग सबके सब, हाँ डू डू बिकम अ गार्बेज लेडी, राइट, कचरा उठाने वाली औरत बनो तुम, क्योंकि दिस इज वॉट यू लाइक। तुमने किसी फिल्म में देखा था एक गोरी औरत जो है वो अमेरिका के अंदर कचरा उठा रही थी, तो तुम्हारा भी शौक हो गया कचरा उठाने का, तुम भी जाकर एक कचरा उठाना उठा लेना, है ना। या ये कि चलो भाई एक लड़की तो बाकायदा पाकिस्तानी थी यूके के अंदर, वो जो है वो फायर फाइटर बन गई, हिजाब पहन करके, है ना, ऊपर स्कार्फ चढ़ाया, जाके फायर फाइटर बन गई है, वो कर रही है फायर फाइटिंग, ठीक है ना, मर्दों के साथ मिलकर के मजे, बिकॉज शी इज फॉलोइंग हर ड्रीम। और आज के दौर के अंदर तो फॉलो ड्रीम्स और कहाँ कहाँ तक जाते हैं, इस वक्त जो है वो जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोमोट की जा रही है, US गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कैनेडियन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर जो उसको फैला रहे हैं, वो कौन सी चीज है जी, व्हाट डज अ गर्ल वॉन्ट टू बिकम, व्हाट इज हर ड्रीम, शी वॉन्ट्स टू लिव विद अनदर वुमन, वो एक दूसरी औरत के साथ रहना चाहती है ना। अब उसको शादी वादी कोई नहीं करनी, ठीक है ना, क्योंकि मर्द जो होते हैं तो मर्द जो है वो औरतों की जज्बात का ख्याल नहीं रख पाते हैं, मर्दों को क्या पता जी औरत की क्या जरूरियात है, औरत की क्या जज्बात है, तो मर्द से शादी करने की बजाय ज्यादा अच्छा नहीं है कि एक औरत से शादी कर लो, ये भी तो एक बच्ची की ड्रीम हो सकती है ना, ठीक है ना। तो अब आप अगर ये नारा लगाएंगी कि जी द गर्ल शुड फॉलो हर ड्रीम, उसको जो है वो जाना चाहिए, तो आपको किसने कहा है कि वो खाली पायलट बनेगी जाकर के, है ना, वो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगी, उसकी ड्रीम जो है वो डॉक्टर इंजीनियर से बाहर नहीं निकल सकती, किसने कहा आपको? वो कल को जो है वो गार्बेज रेडी बनने की ड्रीम बताएगी मुझे, तो गार्बेज रेडी बनना है आप कहिएगा बिल्कुल जाके बनो। फिर वो कहेगी नहीं मुझे तो एक औरत के साथ ही शादी करनी है, एक लड़की के साथ ही शादी करके रहना है, अपनी जिंदगी ऐसी गुजारनी है, मना करके देख लीजिएगा फिर उसको। आपका क्या ख्याल है? किसी खातून ने माशाल्लाह आप में से सवाल लिखा कि ये तो अमेरिका की बातें हैं, हमें आ रहा है इससे क्या ताल्लुक, हमारे इससे क्या ताल्लुक, ये तो अमेरिका की बातें हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ये जो मर्द की मर्द से शादी और अज़दवाजी ताल्लुकात वाले मामलात हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह तो खैर नहीं लेकिन बहुत ज्यादा मौजूद है और ये बढ़ रहे हैं, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ। ये आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर बल्कि स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ये सारी चीजें। सिर्फ मर्द औरत वाले मसले अब सिर्फ नहीं है, औरत औरत और मर्द मर्द वाले मसले भी मौजूद हैं। बल्कि दो चार दिन पहले कराची शहर के अंदर जहां पर दारुल उलूम कराची है ना, दारुल उलूम कराची दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त और सबसे जबरदस्त दारुल उलूम जो है मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफी उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह का एस्टैब्लिश किया हुआ, जिनकी मारिफुल कुरान हम पढ़ रहे हैं, वही दारुल उलूम कराची, उससे चंद मिनटों की ड्राइव पर एक घर है। उस घर ने अपनी छत के ऊपर एक झंडा लगाया, बल्कि एक नहीं दो झंडे लगाए। एक झंडा तो था पाकिस्तान का झंडा, ठीक है, और दूसरा जो झंडा था ना वो हम जिंस परस्तों का झंडा था, हम जिंस परस्तों का, यानी मर्द मर्द औरत औरत, जिसको गे प्राइड कहते हैं, बल्कि एलजीबीटी प्राइड कहते हैं जिसको, उनका बाकायदा एक फ्लैग है, मल्टी कलर्स रेनबो कलर्स का एक फ्लैग है उनका। उस घर वालों ने अपने घर की छत के ऊपर वो झंडा लगाया, क्या मतलब, सारी दुनिया को वो दिखाना चाह रहे थे और दिखा भी चुके क्योंकि उसकी किसी ने वीडियो बनाई और पूरे फिर वीडियो वायरल हुई है, राइट। डिफेंस फेज 7 कराची के अंदर गे प्राइड का, बल्कि एलजीबीटी प्राइड का झंडा जो है वो घर के अंदर लगाया सारी दुनिया को दिखाने के लिए, कर लो जो करना है, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे खिलाफ, राइट। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर क्या 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 बेखौफी है, क्या बेफिक्री है, कोई कुछ नहीं कर सकता इनके खिलाफ। घर पे झंडा लगाता है वो शख्स जिसका भी वो घर है या जिस फैमिली का भी वो घर है, और हम समझ रहे हैं कि जी तो अमेरिका के प्रॉब्लम चाहिए, है ना, यूं तो अमेरिका का तो माहौल ही खराब है जी, अब हम क्या करें अमेरिका का। नहीं जी, अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये आपके सिटी स्कूल्स, आपके बीकन हाउस स्कूल्स और आपके जो ग्रामर स्कूल्स हैं, ये आपके अपने स्कूलों के अंदर ये इश्यूज मौजूद हैं, और आज से नहीं, 20-25 साल पुराने इश्यूज हमें पता है जब हम पढ़ते थे वहां पर, हम किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, राइट। तो आप दीन के खिलाफ जाएंगे ना तो ये चीज रुकेगी नहीं, अब आप उसको रोक नहीं सकते, अब आप थाम नहीं सकते इन चीजों को, आपकी मर्जी के मुताबिक अब नहीं चलेगा, आपने अल्लाह की मर्जी को तोड़ा है ना, आपने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ फैसले किए हैं ना, अब आपके हाथ से मामला निकल गया आपके हाथ से मामला, ठीक है। तो हम इन बातों को समझें, ठीक है ना, क्योंकि हमने अगर अपनी अपने आप को बचाना है जहन्नुम से और अपनी औलादों को जहन्नुम से बचाना है ना, तो ये आंखें बंद करके नहीं बच जाएंगे। यानी एक हिरन है, उसके सामने शेर आ जाए उसको खाने के लिए, और हिरन आंखें बंद करके ये समझे कि जी शेर मुझे नहीं खाएगा, तो क्या वो हिरन बच जाएगा आंखें बंद करने से? उसी तरीके से हम आंखें बंद करके जो बैठे हुए हैं कि जी शैतान हमें नहीं खाएगा, हमें जहन्नुम में नहीं डालेगा, तो क्या हम बच जाएंगे, हमारी औलादें बच जाएंगी जहन्नुम से? जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आती, हमें तो हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, ये सारी बातें हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं, है ना, जो समझ में आनी होती है वो तो आ जाती है समझ में, बड़ी मजे से आती है हमें सारी बातें समझ में, है ना। जो नहीं समझ नहीं होती, हम कहते हैं जी मेरी तो अकल ही काम ही नहीं करती, मैं क्या करूं भाई, ठीक है। तो हम रगबतें पैदा करते हैं अपनी औलाद के अंदर, फिर उसके बाद जो है ना जब औलाद मचल रही होती है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो मचलना शुरू होती है, अब जो है ना वो बोलती है आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, बेटी बोलती है आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं होता इस बात का। हाँ बेटी, हम तो आपके ऊपर एतमाद करते हैं, ये तो बिल्कुल सही कह रही है, हमें तो आपके ऊपर एतमाद होना चाहिए। राइट, तो बेटी पर एतमाद, ये बेटी पर एतमाद नहीं होता बल्कि बेटे पर भी, बेटे भी कोई इससे एग्जाम्प्ट को थोड़ी है। ये बेटा बेटी पर एतमाद का मसला नहीं है, ये मसला क्या है, ये शैतान पर एतमाद का मसला है कि हमें शैतान के ऊपर एतमाद है कि वो हमारे बच्चों को गुनाह सेल नहीं करेगा, जबकि हमने अपनी औलादों को शैतान से एक्सपोज कर दिया है, हमने गलीज तरीन कल्चर के साथ, बुरे तरीन कल्चर के साथ हमने उनको एक्सपोज कर दिया है, अब हम शैतान पर एतमाद करके बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों का वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो बेटी पर एतमाद का मसला नहीं है, एतमाद मसला तो ये है कि हमें अल्लाह पर एतमाद नहीं है, हमें शैतान पर एतमाद है। ही विल नॉट हर्ट अस, ही विल नॉट हर्ट आवर चिल्ड्रन, हमें शैतान पर एतमाद है। तो जो अकलमंद व माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को शुरू से समझाते हैं, बेटा हमें आप पर तो एतमाद है लेकिन हमें शैतान पर एतमाद नहीं है कि वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो आपको जो है वो गुनाह के रास्ते के ऊपर बहकाएगा नहीं, इस वजह से हम आपको लैपटॉप नहीं देते हैं, हम आपको जो है वो सेलफोन हेलफोन इस वजह से नहीं देते, क्योंकि ये नहीं कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, नहीं हमें आपके ऊपर एतमाद है लेकिन हमें शैतान पर एतमाद नहीं है, शैतान इस हेलफोन के जरिए से आपको गुनाह में मुलव्वस करेगा। अभी आप इतनी बड़ी नहीं हुई हैं, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप गुनाह और नेकी के दरमियान फर्क पता कर सकें, शैतान आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने की आप तक पहुंचाएगा कि जिसको पढ़ करके आपका ईमान खत्म हो सकता है, जिनको पढ़ करके जो है वो आपका आपकी हया खत्म हो सकती है। तो शैतान तो इन कामों के अंदर मुस्तकिल लगा हुआ है, इन कामों के अंदर। तो बेटा हमें आप पर एतमाद है, हमें शैतान पर एतमाद नहीं है, इस वजह से हम आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते सेलफोन से, इंटरनेट से, या बाहर की दुनिया के गंदे गंदी सोहबतों से हम आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते। ठीक है ना, बात समझ में आई, कुछ आ रही है समझ में, कोई सवाल करना चाहेगा कोई इसके ऊपर, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? दो दो सूरतें होती हैं जिनमें सवाल नहीं होता, एक तो जब सब कुछ समझ में आ रहा है तो जाहिर है फिर सवाल करने की जरूरत नहीं होती, और दूसरी सूरत क्या होती है, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना, फिर भी जाहिर है बंदा कोई सवाल नहीं कर सकता। ठीक है ना, जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, जब ज्यादा समझ में आ रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लोग तो सवाल करते हैं। तो आप कौन से वाले कैटेगरी में हैं भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? माशाल्लाह सब कुछ समझ में आ रहा है, हम अच्छा गुमान रखना चाहिए ना लोगों से। ठीक है, हम अच्छा गुमान रखते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे वाक्य आते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने वाला वाक्य भी है, बेटे को जो है वो जबा करने वाला वाक्य भी है, और अपनी और बीवी और बेटे को वादिये गैर ज़ी ज़रईन मक्का मुकरमा में अकेले छोड़ करके वापस चला जाने वाला, बहुत सारे वाक्यात हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। लेकिन इस वक्त जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं सूरह मरियम के अंदर, उस वाक्य के अंदर वो क्या, कौन सा वाक्य है ये, जरा आप बताएं ना, अभी जो हम वाकया पढ़ रहे हैं वो उस वाकये का क्या है वाकया, उसको अगर आप एक जुमले में या चंद अल्फाज में बयान करना चाहें तो ये कौन सा वाला वाकया है जी, पता होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन, है ना, ये बाप के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है ये वो वाला वाकया है। ठीक है ना, अब जरा ये बताएं ना कि बाप कौन होता है, बाप वो होता है कि जो कि इस दुनिया में औलाद के आने का सबब होता है, बाप जो होता है वो शफीक होता है, राइट, बाप जो होता है वो मोहब्बत करने वाला होता है, बाप जो होता है वो अपनी औलाद के तमाम जरूरियात का बंदोबस्त करने वाला होता है, बंदोबस्त बाप करता है, माँ जो होती है ना फिर उस बंदोबस्त को औलाद के अंदर पहुंचाती है। ठीक है ना, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. ماں کمانے والی نہیں ہوتی, کمانے والا ہوتا ہے باپ. اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری باپ پر لگائی ہے. ماں کے اوپر ذمہ داری کیا لگائی ہے کہ باپ جو کما کر گھر میں لائے گا اس کو بیٹے کے منہ میں کون پہنچائے گی؟ وہ ماں پہنچائے گی. ٹھیک ہے نا, باپ باہر کما رہا ہوگا, یعنی کہ وہ کما کے لائے گا پھر رات کو بچے کو کھلائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح کمانے چلا جائے گا, سارا دن بچہ بھوکا رہے گا کیونکہ دا فادر شوڈ ہیلپ ان دی ہاؤس, ہے نا, باپ کو گھر کے اندر مدد کرنی چاہیے. تو ماں جو ہے وہ کہاں سے بچے کو سنبھالے گی, ماں سے تو سنبھلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب بچہ جو ہے وہ سارا دن بھوکا رہے گا کیونکہ باپ تو باہر کمانے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ باہر سے کما کر کے واپس آئے گا تو وہی کھلائے گا بچوں کو, اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ کنڈر گارٹن میں داخل کرو بھائی, ڈے کیئر کے اندر داخل کرو بچوں کو, کیونکہ باپ صاحب جو ہیں وہ کمانے گئے ہوئے, کیونکہ اماں نے جو ہے وہ اماں نے بھی کمانے جانا ہے, کیونکہ اماں کو ان کے ابا نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے یونیورسٹی بھیجا تھا. رائٹ, اب جب یونیورسٹی پڑھ لیا انہوں نے تو اب جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھیں گی نا. رائٹ, اتنا جو ابا نے خرچہ کیا تھا اماں کے, یعنی اماں کے ابا بچے کے نانا حضرت نے جو اتنا خرچہ کیا تھا اپنی بیٹی کی ایجوکیشن کے اوپر, تو اب گھر بٹھانے کے لیے تو نہیں کیا تھا نا. رائٹ, اب اس ایجوکیشن کا کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے. رائٹ, ابا بھی چاہیں گے کہ اب وہ کچھ کمائے, کچھ اپنے ایجوکیشن کو استعمال کرے. بیٹی خود بھی چاہے گی کہ میں نے اتنی محنت کر کے, اتنی کتابیں پڑھ کر کے, اتنا جو ہے وہ میں نے جو ڈگری وگری حاصل کری ہے, تو اب میں جو ہے وہ بچے کو فیڈ کرانے کے لیے گھر بیٹھے رہوں, بچے کے ساتھ جو ہے بچے کے جو ہے وہ رونا سننے کے لیے میں گھر بیٹھے رہوں, ہے نا, رو رو کر کے میرا دماغ خراب کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے. رائٹ, میں نے تو اتنا پڑھا ہے تو میں اس کو استعمال کروں نا بھائی کہیں. ٹھیک ہے نا, تو جب بچے کو ہم پڑھاتے ہیں پیروں پہ کھڑا کرنے کی نیت کے ساتھ, پہلے جیسے وہ پیروں پہ نہیں کھڑی ہوتی تھی, پہلے وہ ہاتھوں پہ کھڑی ہوتی تھی یا سر کے بل کھڑی ہوتی تھی, اب ہم جو ہے وہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ ابو حضور جو ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں میری بچی اتنا پڑھ لکھ کر کے ضائع کر رہی ہے, کچھ کرے باہر نکل کر کے. بچی خود بھی چاہتی ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کر کے میں ضائع کروں, میں کچھ کروں. پھر اس کے بعد بچی کے سسرال والے, اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو, کسی مرد کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو گئی ہے, ورنہ اب تو ضروری نہیں ہے مرد کے ساتھ شادی ہونا, ہے نا, پاکستان میں اتنی آزادی ہے اور اتنا پروٹیکشن ہے کہ جھنڈا لگا سکتے ہیں نا گھر کے اوپر, تو کیا کر نہیں سکتے اب شادی, رہ نہیں سکتے کیا؟ بہرحال اگر نہیں کری اس نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی, لڑکے کے ساتھ شادی کر لی, تو اب تو سسرال والے بھی ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب تیسرے کون ہوتے ہیں؟ سسرال والے. تو اب سسرال والے بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ہم نے بھی تو آخر کو بچی کی ڈگری دیکھ کر کے شادی کری ہے نا. رائٹ, بچی نے اتنا پڑھا تھا, اتنی جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہے, اتنی جو ایجوکیٹڈ ہے, اتنا اس کے پاس ڈگریز ہیں, ہے نا, تو اب وہ بھی ہمارے بچے کی ہیلپ کرے, بچے کی ہیلپ کرے یا ہماری ہیلپ کرے, کرے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرے نا, وہ بھی تو کما کے لے کر کے آئے نا آخر کو, اس کے ساتھ ہم نے شادی کروائی ہے اپنے بیٹے کی, ایسی کوئی تھوڑی کروائی ہے, فری میں کوئی تھوڑی کروائی ہے. اگر کام نہیں کروانا تھا تو ہم کسی مولویا سے نہیں شادی کروا دیتے اس کی, کسی عالمہ سے اس کی شادی نہیں کروا دیتے اگر ہمیں کام نہیں کروانا تھا. بھائی ہم نے تو گریجویٹ سے شادی کروائی اس لیے کہ کام کروانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا, تو جب وہ کام کرے گی, چاہے اپنے ابو کی وجہ سے کام کرے, چاہے وہ اپنی وجہ سے کام کرے, چاہے اپنے سسرال کی وجہ سے کام کرے, تو پھر بچے تو جائیں گے ڈے کیئر کے اندر, اور ڈے کیئر کے اندر پھر ان کو جو ہے وہ نیک مسلمان اور نیک پاکستانی اور نیک جو ہے وہ ملک کا شہری, نیک ہندوستانی, وہ ڈے کیئر والے بنائیں گے پھر اس کے بعد. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بنائیں گے. ڈے کیئر والے جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں, ماں کر سکتی ہے اتنا اچھا کام؟ جواب چاہیے آپ سے. ڈے کیئر والے بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں, کوئی ماں کر سکتی ہے اتنا اچھا کام؟ ماں تو نہیں کر سکتی نا اتنا اچھا کام. تو ڈے کیئر میں جانا چاہیے نا بچوں کو, صحیح, کیونکہ اماں نے تو پڑھا ہے نا آخر. ٹھیک ہے, تو اماں نے جو پروفیشنل ایجوکیشن, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اس کو اماں کو انگریزی نہیں آنی چاہیے, اماں کو بالکل پتہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی پڑھے, بالکل پڑھے, اچھی طریقے سے پڑھے, لیکن پروفیشنل ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ارننگ کے قابل ہو جائیں. ارننگ, अर्निंग एक अलग चीज होती है, आप मैट्रिक पास करके अर्न नहीं कर सकते, इंटर पास भी अर्न नहीं कर सकता, अर्न करने के लिए प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, और जब प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है ना, अब अर्न करना पड़ता है, फॉर व्हाटएवर रीजन अब आपको अर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेंगी आप, आपका अपना नफ्स आपको बैठने नहीं देगा इत्मीनान के साथ। तो फिर बच्चों के लिए तो डे केयर बहुत अच्छी जगह होती है ना, वो वहां पे जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से इंसान भी बनेंगे और शैतान भी बनेंगे, सब कुछ बन जाएंगे वहां पे जाकर के, ठीक है। तो भाई अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, हमने जो है ना वो अपनी ख्वाहिश परस्ती, अपनी नफ्स परस्ती की वजह से ना हमने उस निज़ाम को ऑल्टर किया है, और उसके ऊपर फिर हम दीनी दलाइल भी देते हैं कि हमारा दीन इसके खिलाफ कोई थोड़ी है। आपको पता क्या है कि हमारा दीन किसके खिलाफ और इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ पता होता नहीं है और फिर बोलना शुरू करते हैं हमारा दीन पढ़ाई के खिलाफ। हमारा दीन का पहला लफ्ज जो है होता है इकरा, है ना, हमारा दीन का पहला लफ्ज जो है होता है इकरा, पढ़ो, अब पढ़ते चले जाओ सारे के सारे लोग पढ़ें, क्योंकि पहला लफ्ज जो है वो इकरा, अब सब पढ़े जा करके भाई और पढ़ते ही चले जाएं। बच्चा संभालना जो है वो तो पढ़ाई के खिलाफ है, तो बच्चा बच्चा होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा अच्छा तो ये है कि बच्चा ही ना हो कोई, राइट। और अब नया जमाना ये है कि भाई बच्चा होता क्यों है, शादी होती है तब बच्चा होता है ना, तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि शादी ना हो, शादी ही नहीं करो, फिर कर लेंगे तो फिर बच्चों को कौन रोकेगा आने से, मुश्किल हो जाएगी उसको रोकना, तो शादी ही नहीं करते फिर, ठीक है ना। तो शैतान जो है ना वो इस तरीके से वन स्टेप एट अ टाइम, पहले कहता है बच्चा कम हो, बच्चे कम हो, ये शैतान का पहला स्टेप, बच्चे कम हो। शैतान का दूसरा स्टेप बेहतर है कि हो ही ना, शैतान का तीसरा स्टेप शादी नहीं करो, शैतान का चौथा स्टेप दूसरे जेंडर से शादी क्यों करते हो, अपने जेंडर से कर लो, है ना, कोई एहतमाल ही नहीं रहेगा, फिर मसला ही कोई नहीं रहेगा। तो शैतान जो है ना ये स्टेप वाइज काम करता है। अमेरिका के अंदर जो आज हालात है ना, ये एक दिन में नहीं हुए थे, ये एक स्टेप में नहीं हुए थे, अमेरिका में भी शैतान ने स्टेप वाइज काम किया है, यूरोप में भी शैतान ने स्टेप वाइज काम किया है, एकदम से सारा काम नहीं हो गया यूरोप के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी शैतान जो है वो स्टेप वाइज काम करता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि ये जो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वाकया पढ़ रहे हैं, तो इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातचीत किसके साथ हो रही है, अब्बा हुजूर से बातचीत हो रही है, अब्बा हुजूर शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले वालिद मोहतरम, है ना। तो वालिद मोहतरम चूंकि वालिद हैं, तो अब सच्चा तो वालिद को होना चाहिए, अच्छा तो वालिद को होना चाहिए, बेटे को कैसे, बेटा कैसे अच्छा हो सकता है वालिद के सामने, है ना, क्योंकि वालिद वालिद हैं, तो वालिद ही को सही होना चाहिए। लेकिन अजीब बात है कि कुरान के अंदर तो उल्टा मामला लिखा हुआ है, बाप गलत है बेटा सही है, बेटा जो है वो बाप को जहन्नुम से बचाने की कोशिश कर रहा है, जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा है बेटा, और बाप क्या कर रहा है, बाप कह रहा है कि लइन लम तन्तही, अगर तुमने मुझे जहन्नुम से बचाने की मेहनत खत्म ना करी, लअर्जुमन्नका, मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा। शफीक बाप जो है वो बेटे से क्या कह रहा है, अगर तुमने मुझे जहन्नुम से बचाने की कोशिश खत्म ना करी तो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा और मैं तुमसे कतअ ताल्लुक कर लूंगा, दूरी इख्तियार कर लूंगा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ठीक है। तो कुछ समझ में आता है इस कॉन्वर्सेशन से, कुछ समझ में आता है इस कॉन्वर्सेशन से, क्या हिदायत मिलती है इस किताब हिदायत से हमें, इस किताब हिदायत के अंदर ये जो वाक्य अभी हम पढ़ रहे हैं इससे हमें क्या हिदायत मिलती है कि माँ बाप जो है ना वो बेशक दुनियावी एतबार से बच्चों के लिए कितने ही शफीक क्यों ना हो, कितने ही मोहब्बत करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका इल्म सही नहीं है, अगर उनका इल्म सही नहीं है, तो उनकी ये सारी शफकत और मोहब्बत किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो अपनी औलाद को जहन्नुम में ले जाने की कोशिश करेंगे। अपनी शफकत और मोहब्बत के बावजूद, क्योंकि उनका इल्म गलत है, राइट? बात कहां से शुरू हुई थी? यही शुरू हुई थी ना कि या आबती इन्नी कद जा अनी मिनल इल्मी, ए मेरे प्यारे अब्बू, ए मेरे अब्बू जी, मेरे पास इल्म आया है, आपके पास नहीं आया, फत्तबिअनी, आप मेरी इत्तबा करें। तो क्या मतलब? बाप के पास इल्म सही नहीं है। ये तो नहीं कहा कि आप अब्बू जो है, आप जो है ना, वो आप मुझे खाना क्यों नहीं खिलाते हैं, और आप जो है वो मेरी परवरिश के लिए आपने कुछ किया क्यों नहीं, और आपने जो है वो घर नहीं बनाया, और आपने कोई कमाई नहीं करी, ये सारी बातें तो नहीं हो रही ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बाप के बारे में। बल्कि क्या बात हो रही है? अब्बू आपके पास इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जहन्नम से कैसे बचना है। तो भाई बाप जो है ना वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है बच्चे के लिए, लेकिन अगर उसका इल्म गलत है तो वही बाप बच्चे को जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेगा। ठीक है, बचाएगा कौन बच्चे को? जिसका इल्म सही है, जिसका इल्म सही है, यानी जो जानता है कि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, मरने के बाद ईमान और आमाल की बुनियाद पर फैसला होगा। ये है सही इल्म होना। बाप की शफकत अपनी जगह, लेकिन अगर इल्म गलत है उस शफकत का औलाद को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, अगर इल्म गलत है माँ बाप का। तो हम जो है ना अपने माँ बाप की मोहब्बत के अंदर जो है, माँ बाप अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू, राइट, इतना उनकी मोहब्बत में आगे बढ़ जाते हैं कि हम उनके गलत इल्म के बावजूद हम उन्हीं की मान करके चलना चाहते हैं। और बदकिस्मती इतनी ज्यादा इस वक्त, बहुत ज्यादा, यानी ये कोई एक्चुअली नई बात नहीं है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से मामला चल रहा है कि बाप जो है वो औलाद का नुकसान कर रहा है, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि लगता ऐसा है कि माँ बाप से ज्यादा बड़े दुश्मन इस वक्त औलाद की और कोई नहीं है। माँ बाप से ज्यादा बड़ा दुश्मन औलाद का और कोई नजर नहीं आ रहा। माँ बाप छोटी उम्र से औलाद को जो है वो ऐसी दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला कर रहे हैं, दुनिया की रग़बत में मुब्तला कर रहे हैं, अपनी सारी जान तोड़ मेहनत करके। कौन करता है उस वक्त? शुरू में तो बच्चा स्कूल भी नहीं गया होता, माँ बाप जो है वो सारी ये चीजें पे पैदा कर रहे होते हैं, गुनाहों की रग़बत, सेलफोन, बच्चा जो है वो अभी 3 महीने का नहीं होता कि उसको सेलफोन से एक्सपोज कर देते हैं। अब सेलफोन के अंदर जो रेडिएशन, ठीक है बच्चे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा, रेडिएशन तो है ना सेलफोन से, जिससे कि बच्चों को नुकसान होता है, माँ बाप जो है वो तीन माह के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को जो है सेलफोन पकड़ा देते हैं। तो नुकसान कर रहे हैं कि फायदा कर रहे हैं? है? अपनी मोहब्बत के बावजूद बच्चे का नुकसान कर रहे हैं ना, जब उसको ये रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं। और इस तरह की फिर जानते हैं हम लोग क्या क्या होता है फिर हमारे यहाँ, राइट? तो माँ बाप जो है ना वो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं इस वक्त, अपने अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए वो बच्चों को नुकसान के रास्ते के ऊपर डाल रहे होते हैं, बर्बादी और तबाही के रास्ते के ऊपर डाल रहे होते हैं। इनका मनसब जो था वो सबसे अहम मनसब था, बच्चों के एतबार से सबसे अहम, सबसे करीबी मनसब था। ये अपने इस मनसब को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को नफे के रास्ते के ऊपर डाल सकते थे, दुनिया और आखिरत के नफे के रास्ते के ऊपर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने इस करीबी ताल्लुक को, सबसे करीबी ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को गुनाह के रास्ते के ऊपर डाला, जहन्नुम के रास्ते के ऊपर डाला। तो कोई दूसरा शख्स इतना बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता, इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं कर सकता जितना कि माँ और बाप कर सकते हैं बच्चे के साथ, और करते हैं जब वो अपने इस करीबी तरीन ताल्लुक को जो है वो गुनाह के रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी और का इतना करीबी ताल्लुक होता ही नहीं है। कोई और जितना भी नुकसान पहुंचाए, इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो कहते हैं ना कि जी गैर अगर आपको धोखा दे तो इतना तकलीफ नहीं होती, अपने धोखा दे तो तकलीफ ज्यादा होती है ना, और अपने जो है वो ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो करीबी होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से माँ बाप दूर के लोग नहीं होते, गैर लोग नहीं होते, ये तो सबसे करीबी लोग होते हैं, औलाद के लिए, ये जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना नुकसान कोई और नहीं पहुंचा सकता। तो मां बाप का इल्म सही होना ये शर्त है, और हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं होती। हमें तो बस अम्मी से मोहब्बत है, अब्बू से मोहब्बत है। भाई वो मोहब्बत होना, अदब होना, वो एक अलग चीज है। हमारे दीन ने काफिर मां बाप का भी अदब करने का हुक्म दिया है, काफिर मां बाप के साथ भी तमीज के साथ और उनकी खिदमत करना, खिदमत करना। काफिर मां बाप, मुसलमान गुनाहगार मां बाप खाली नहीं, काफिर मां बाप की भी अपने आप को मिटा करके खिदमत करो, राइट? लेकिन उनकी इत्तेबा ना करो, उनकी इत्तेबा ना करो, बिल्कुल भी इत्तेबा करने की इजाजत नहीं है कि जी अम्मी से मोहब्बत है, अब्बू से मोहब्बत है, तो मैंने उन्हीं की इत्तेबा करनी है, उन्हीं की बात मान करके चलना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खिदमत करना एक अलग चीज है, इत्तेबा करना एक अलग चीज है। खिदमत करने का हुक्म दिया गया, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो फासिक और फाजिर हो, कितने भी गुनाहगार हो, खिदमत करो अपने मां बाप की। लेकिन इत्तेबा सिर्फ उस वक्त कर सकते हो जब वो सही इल्म के साथ तुम्हें किसी चीज का हुक्म देते हो, तब इत्तेबा कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते तुम उनकी इत्तेबा। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, पूछें कुछ आपसे, इतराज नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसी चीज हो, किसी ने एक कोई मैसेज लिखा हुआ है, जरा थोड़ी देर पहले लिखा था तो उसको अब मैं पढ़ता हूँ। एक इश्काल आता है जहन में कि खवातीन जब मदारिस में मुअल्लिमा होती हैं तो भी मॉर्निंग टाइम घर पे नहीं होती, तो इस सूरत में बच्चों को किस तरह मैनेज करें? यानी जो मदारिस के अंदर खवातीन पढ़ाती हैं तो वो भी सुबह को अपने घर पे नहीं होती, तो उस वक्त बच्चों को किस तरह से मैनेज करें? देखिये, पहली बात तो ये है कि जो दीन का रास्ता है ना, उस दीन के रास्ते के ऊपर अल्लाह ताला ने प्रायोरिटी सेट करी है ना? तो दीन जो है ना, ये तो प्रायोरिटीज का नाम है कि क्या चीज आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है, क्या चीज नंबर टू प्रायोरिटी है, क्या चीज नंबर थ्री प्रायोरिटी है, ठीक है ना? अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज को मैसअप कर दिया है तो फिर ये दीन नहीं होता। अगर आपने नंबर थ्री प्रायोरिटी को नंबर वन प्रायोरिटी बना दिया है तो अब ये दीन नहीं होता, अब ये क्या कहलाता है? बेशक आप बुरका भी पहनी हुई हैं, आप जो है वो बुखारी शरीफ पढ़ा रही हैं, और आप जो है वो मुस्लिम शरीफ पढ़ रही हैं, और आप जो है वो काला रसूलुल्लाह काल्लाह सब कुछ बोले चले जा रही हैं, ठीक है ना? लेकिन आपने थर्ड प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी बना दिया है, अब ये क्या कहलाएगा? काल्लाह काला रसूलुल्लाह बुरका, अब ये क्या कहलाएगा? जरा बताए ना, अब ये दीन कहलाएगा या ये कुछ और चीज कहलाएगी? जी उन्नीस खवातीन में से किसी एक के पास भी इसका जवाब नहीं, या है तो इतना मुश्किल है कि लिखा नहीं जा रहा। आप बुरका पहन करके काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह पढ़ाने के लिए जा रही हैं, ये तो जबरदस्त दीन है ना, ये तो इसको हम बड़ा, इसको हम दीन कहते हैं ना, बड़ा जबरदस्त है ना, लेकिन ये थर्ड प्रायोरिटी को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया हुआ है तो ये दीन नहीं कहलाएगा। अब इन्होंने जवाब लिखा है, ये कहलाएगा ख्वाहिश परस्ती, ये कहलाएगा नफ्स परस्ती, और ये कहलाएगा अपना शौक पूरा करना, शौक पूरा करना, ठीक है ना? तो दीन जो है ना, ये नफ्स परस्ती का नाम नहीं है, ये शौक पूरे करने का नाम नहीं है, ठीक है ना? दीन तो है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेकंड थिंग्स सेकंड, थर्ड थिंग्स थर्ड, ये है दीन। तो ये तो था आपके जवाब, आपके सवाल का उसूली जवाब, ठीक है ना? यानी ये उसूल है, दिस इज द रूल, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं, आगे बात ये करते हैं कि जी अगर किसी कोई है मुअल्लिमा और अब उसकी शादी हो जाती है, और शादी के अंदर भी ऐसा कि शौहर जो था वो ही वॉज ओके विद इट, कि हाँ जी मेरी बीवी जो है वो मदरसे जाएगी, पढ़ाएगी, माशाल्लाह दीन की खिदमत कर ली है और उसने इतना इल्म हासिल किया, इसको आगे इल्म पढ़ाना चाहिए, दीन की खिदमत करनी चाहिए, मदरसे जाके बहुत अच्छी दीन की खिदमत कर रही है, शौहर तैयार है इसके लिए, शौहर इस इजाजत के साथ फिर यानी इस रजामंदी के साथ शादी करता है, बहुत जबरदस्त बात है, उसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्दे के साथ जा रही है, ठीक है ना, अच्छी नेक सोहबत में जा रही है, कोई बुरी जगह नहीं जा रही, बेपर्दगी के साथ नहीं जा रही मदरसे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो दीनी मदारिस उलमा की सर उलमाए हक की सरकर्दगी में सरपरस्ती में चल रहे हैं, वहां बेपर्दगी का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ चंद तो काली भेड़ें तो हर जगह निकल ही आती हैं, लेकिन ओवरऑल वहां पे पर्दे का माहौल होता है और अच्छी बातें होती हैं, अच्छे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो शौहर की इजाजत के साथ ऑफकोर्स वो ये काम करेगी। अब अगर उसके यहाँ औलाद भी हो जाती है, ठीक है, तो अब औलाद के लिए जो है ना फिर शौहर के साथ मिल करके अगर वो कोई अच्छा सा अरेंजमेंट कर लेती है कि जी जो मैंने 2 घंटा क्लास पढ़ानी है, 1 घंटा क्लास पढ़ानी है, भाई सुबह से लेकर शाम तक नहीं होता मदारिस के अंदर, और वैसे भी जो टीचिंग प्रोफेशन होता है उसके अंदर मुस्तकिल की क्लासेस नहीं होती, ठीक है, दीनी मदारिस के अंदर ये अकोमोडेशन होती है, और अगर नहीं है कहीं पर तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि अगर किसी के घर के अंदर ऐसी जरूरियात आ गई हैं तो अब उसको किसी तरीके से ऐसे अकोमोडेट करें कि बच्चों का बिल्कुल नुकसान ना हो। 1-2 घंटे के लिए संभालना बच्चों को किसी दूसरे के हेल्प के साथ, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो तो आप घर में रहते हैं तो भी आपको जरूरत पड़ती है, राइट, किसी के हेल्प की कि 2 घंटे के लिए आपकी अम्मी ने संभाल लिया या आपकी सास ने संभाल लिया या किसी और ने संभाल लिया या घर के अंदर काम करने वाली आती, भाई घर में खाना भी तो पकाते हैं ना औरतें, ये तो नहीं होता कि बच्चा हो गया तो आप खाना पकाना छोड़ देते हैं, राइट, तो जब खाना पकाना नहीं छोड़ते हैं तो फिर दीन की तालीम पढ़ाने का काम ये भी तो एक अहम तरीन कामों में से है ना, और शौहर की इजाजत के साथ हो रहा है ना, शौहर के खिलाफ मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रहा, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया था उस सिस्टम के तहत हो रहा है। तो अब जो 1-2-3 घंटे के लिए भी अगर कोई इस किस्म की हेल्प का अरेंजमेंट हो जाता है, चाहे घर पर हो चाहे मदरसे में हो, मदरसों के अंदर औरतों के मदरसों के अंदर भी खुसूसन मुअल्लिमात के लिए इसका अरेंजमेंट हो जाता है, करते हैं लोग, ठीक है, तो इस तरीके से वर्क अराउंड आराम से किया जा सकता है, हो जाता है, और ये भी किस लिए कि भाई वो एक बहुत अजीम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी यानी उम्मत को इस वक्त शदीद जरूरत है दीनी उलूम की, दीन की समझ की, औरतों को नहीं पता कुछ भी दीन के बारे में, तो अगर इसने इतना इल्म हासिल किया इसके इल्म का फायदा उठाना चाहिए, यानी बहुत सारी, एक तो ये कि शराइत के साथ ये चीज जायज होगी अगर वो शराइत पूरी हो रही है, दूसरी चीज ये है कि भाई आप इसके लिए बेहतरीन कोई यानी शरीयत की इसके अंदर कोई खिलाफ वर्जी की गुंजाइश नहीं है, शरीयत की पाबंदी के साथ ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, और इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि भाई जब बच्चे छोटे हैं तो उस वक्त आप लीव ले लें, छोड़ दें उसको, लेकिन ये सारा का सारा दीन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रहा है ना, लेकिन जब यही जो प्रोफेशन जो होता है वो आपका किसी आईटी वर्ल्ड के अंदर या कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जब ये काम हो रहा होता है तो फिर वहां पर तो ना तो नेक लोग होते हैं वहां पर, राइट, ना तो पर्दे का किसी किस्म का मामला होता है, राइट, और जो है फिर वहां पर तो इस किस्म का कोई वो कहा नहीं, बच्चों के राइट्स हैं और बच्चों के जो है वो यानी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है और उनका जो है वो ख्याल करना है, और तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता है, बिल्कुल डिफरेंट वहां पे प्रायोरिटीज होती हैं, और दीनी मदारिस के अंदर बिल्कुल डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज जो है वो किया जा सकता है और बहुत माशाल्लाह लोग करते हैं। और फिर उसके बाद ये कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन के बहुत सारे ऑप्शन जो है कोरोना की मेहरबानी की वजह से और भी ज्यादा, पहले भी होते थे लेकिन अब तो और ज्यादा बढ़ गए ऑनलाइन अरेंजमेंट्स, दीनी उलूम हासिल करना, दीनी उलूम पढ़ाना उसके लिए, है ना, तो और कोई सवाल, लेकिन कोई औरत अगर ये कर रही है ना कि नहीं मैंने तो बस जी मैंने तो पढ़ा है और मैंने तो पढ़ाना है नो मैटर व्हाट, ठीक है ना, अब वो मैं अपने बच्चे किसी के ऊपर किसी के सर पे डालूं और मैं जाऊं मदरसे जाकर के पढ़ाऊं बिकॉज आई हैव मैंने दीनी उलूम हासिल किए हैं, इस शक्ल में ये चीज دین نہیں رہے گی بلکہ یہ خواہش پرستی نفس پرستی بن جائے گی. ٹھیک ہے, دنیا کے ماحول, اچھا کسی اور نے ایک اسی طرح کا ایک ڈائریکٹ میسج لکھا ہے, دنیا کے ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اولاد کی دعا کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ تربیت کرنا کتنا مشکل ہے. ہم خود گناہوں سے بچنے میں سٹرگل کرتے ہیں, بچوں کو کیسے بچائیں گے. یہ تو پھر شیطان والی بات آپ نے کر دی ہے کہ اولاد کی دعا کرنے سے ہی ڈر لگتا ہے نا. یہ بالکل فضول قسم کے جو خیالات ہیں نا, یہ شیطانی کی طرف سے آتے ہیں نا, کہ نہ اولاد ہوتی نہ جو ہے وہ اس کو گناہوں سے بچانے کی محنت کرنی پڑتی. بھئی دعا کریں کہ اللہ میں مر جاؤں, نہ میں زندہ ہوتی نہ مجھے گناہوں سے بچنا پڑتا, کیونکہ دنیا کا ماحول اتنا خراب ہے نا, اے اللہ مجھے موت دے دے. یہ بھی تو پھر دعا کرنی چاہیے نا, اگر اولاد کے لیے دعا نہیں کرنی ہے تو پھر اپنے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی کیوں اس دنیا میں ہوں, مجھے بھی خام خواہ گناہوں سے بچنا پڑ رہا ہے اتنے برے ماحول کے اندر. ٹھیک ہے, تو نہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کے لیے دعا کریں, اور ساتھ ساتھ نیک صالح اولاد کی دعا کریں نا, خالی اولاد کی کیوں دعا کرتی ہیں, نیک صالح اولاد کی دعا کریں, با صلاحیت با توفیق اولاد کی دعا کریں نا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ خالی جو ہے وہ بس اولاد آ گئی اور باقی جو نیک صالح جو تھا وہ بس ایسے ہی گریوی میں لگا دیا تھا ساتھ. اصل میں تو چاہیے تھی اولاد جس کے ساتھ میں شغل کر سکوں ہر قسم کا, تو پھر نیک صالح نہیں ملے گی. ایسے الفاظ بول دینے سے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی, بلکہ دعا جو ہے نا وہ دل سے مانگنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری دعا قبول کریں گے, نیک صالح بھی دیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی انتظامات بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تاکہ آپ اپنی اولاد کو نیک صالح ماحول کے اندر پرورش بھی دے سکیں. ٹھیک ہے بھائی, نیک صالح ماحول موجود ہے دنیا کے اندر, بہت اچھی طریقے سے اچھے آپشنز اویلیبل ہیں. یہ جو آپ کو ڈراتے رہتے ہیں نا ہر وقت, یہ اس لیے نہیں ڈراتے کہ بس کچھ ہے ہی نہیں اب ختم ہو گیا سب کچھ, نہیں, یہ آپ کو اس لیے ڈراتے ہیں اس طرح کی باتیں بتا بتا کر کے, تاکہ چوکن نہیں ہو جائیں, برے ماحول سے اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو بچائیں اور نیک ماحول میں لے کر کے آئیں. اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہوتا کہ نیک ماحول ہے ہی نہیں, نیک لوگ موجود ہی نہیں ہے, نیک آپشنز ہیں ہی نہیں اویلیبل. بھائی ہیں سارے کے سارے اویلیبل. ٹھیک ہے, ہم غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, نیکوں کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور برے ماحول کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ برا تو ہے لیکن کسی اور کے لیے ہوگا, ہمارے لیے تھوڑی برا ہے, ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہر وقت آپ کو ڈرانے کی محنت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیک ماحول الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ بہت کچھ ہے بالکل, اور اگر نہیں پتا ہے تو بھائی پتا کریں, معلوم کریں. ٹھیک ہے نا, جب بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے نا, بچوں کے اسکول کی تلاش میں لوگ جو ہے وہ کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں کہ اچھا اسکول مل جائے, اور پھر وہ لمبے لمبے سفر بھی کرتے ہیں, اور پھر لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں, اور پھر آن لائن گروپس پہ بھی جا کر کے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارے بچے کا کیا ایکسپیرئنس ہے, اور آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, اور اس کا کیا اتنی محنت کرتے ہیں بچے کو اسکول کے لیے, تو بھائی اچھے ماحول کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے, اللہ کو کیا جواب دینا ہے, ادھر تو اتنی محنت کری تھی ادھر میں نے کوئی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور بھی سوال, ٹائم مکمل ہو گیا ہے تو اگر ہوگا بھی تو پھر نیکسٹ کلاس کے لیے اس کو بچا کر رکھیں. ٹھیک ہے, انہوں نے الگ سے سوال لکھے تھے واٹس ایپ کے اوپر, ملے گا جواب. اور بھی جتنے سوال ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پوچھتے رہیں گے نا, پھر جواب مل جائیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, چلے کم از کم دوسری کلاس سے ختم کرتے ہیں, اگر آپ کی دوسری ٹیچر آ گئی تو آپ کی دوسری کلاس ہو جائے گی. آخر السلام علیکم.